ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भट्टी में बैठे तपस्या करके अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना रहे हैं, क्योंकि अब संसार को हमारी जरूरत है। दुनिया की हालत तो आप देख ही रहे हैं, चाहे निर्धन हो या धनवान हो, हर एक भयभीत हैं, उदास हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, और उनको देने वाला सिवाय हमारे आपके और कोई भी नहीं है। तो अब जो समय है वो ये समय है कि हमें दाता, बरदाता, विधाता, मास्टर शब्द तो लगाएंगे ही, वो हमें बनना है। तो वो कब होगा? जब हमारे पास ये सारे खजाने भरपूर होंगे। अगर हम ही खाली होंगे, दूसरों की झोली कैसे भरपूर करेंगे? और जब तक हम देंगे नहीं, तब तक हमारा जो दुआओं का स्टॉक है वो खाली रहेगा। तो आप सब भट्टी में बैठे हैं, तपस्या करने आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसे हमारी पढ़ाई का 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आजकल एक विषय और भी ऐड हो गया है, मैनेजमेंट। तो ये 5 विषय में मुझे जो सबसे अच्छा विषय लगता है, सबसे अच्छा विषय लगता है, वो है राजयोग का। राजयोग के विषय में जब तक परमात्म प्यार नहीं होगा, तब तक हम लगन में मगन नहीं हो सकते। जब परमात्म प्यार होगा तो हम लगन में मगन हो सकते हैं। अब इस भट्टी में हमें अपने में वरदान के द्वारा ये परिवर्तन लाना है कि अब मैं लगन में मगन रहूंगा। अगर परमात्म प्रेम है तो परिवर्तन आसान है। प्यारे बाबा की एक मुरली है, हमें बचपन से पढ़ने का शौक बहुत था, लेकिन ज्यादा पढ़े नहीं। उस जमाने में लड़कियों को इतना पढ़ाते नहीं थे, तो ज्यादा पढ़ी नहीं मैं। पढ़ने का शौक बहुत था। तो एक विशेषता ये थी कि स्कूल में 2 पेज, 4 पेज, 8 पेज, 10 पेज एक बार पढ़ लेती तो मुंह जवानी याद रहता। तो जैसे सेंटर में रहने आए तो हम सब बहुत घरेलू व्यक्ति थे। हमारे घरों में बहू तो बहू, लड़कियां भी थोड़ा पर्दे से ही, कायदे से ही रहती थी हमारे जमाने में। मगर जब हम प्यारे बाबा के यज्ञ में आए, सेंटर में रहने आए तो भाषण करना सीखा। तो भाषण फिर पहले मैं नोट्स बनाती थी, कम से कम 20 पेज, आधा पौना घंटा का भाषण 20 पेज पहले नोट्स बनाती, फिर डायरी में लिखती। मजे की बात, वो 20 पेज पूरे याद रहते थे। तो वो भाषण करने में, क्योंकि पॉइंट तो याद ही होती थी, किंतु परंतु भी मिस नहीं होता था। ये वरदान था कि तो अज्ञान काल की विशेषता थी। तो उसका फायदा ये हुआ कि पढ़ाई का शौक तो था ही, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, प्यास रह गई, तो ड्रामा अनुसार बाबा के बच्चे बन गए। बाबा के बच्चे बन गए तो यहाँ जितना पढ़ो उतना कम, जो पढ़ो ये याद रहेगा। तो प्यारे बाबा की एक मुरली है, परमात्म प्यार तीन मंजिलों को पार कराता है। आप भट्टी में है ना, तो ऐसे छोटी छोटी पॉइंट पक्का करेंगे तो आज अभी आपकी लाइफ मन आपका हृदय अर्थात आपकी वृत्ति अभी चेंज हो जाएगी। अभी परमात्म प्यार तीन मंजिलों को पार कराता है। पहली मंजिल देह, और देह की जो इंद्रियां हैं, एक है स्थूल इंद्रियां, एक है सूक्ष्म, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, वृत्ति है, ये सब चीजें हैं, आंख है, नाक है, कान है, बहुत इंद्रियां शरीर में। तो अगर सच हमारा बाबा से प्यार है तो देह से न्यारे होने में सिकंड नहीं लगता। ये इंद्रियां और संस्कार सबसे न्यारे, परमात्म प्यार। दूसरी मंजिल देह, देह के संबंध, कोई संबंध कभी नहीं खींचता, कोई संबंध कभी नहीं खींचता। और तीसरी मंजिल पदार्थ, वैभव, साधन, वस्तु, व्यक्तित्व ही गया, स्थान नहीं खींचते। परमात्म प्यार तीन मंजिलों को पार कराता है। बाबा की मुरली में ऐसा डिटेल है। तो क्या ब्राह्मण जीवन कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारे और प्यारे, और सेंटर में समर्पित है तो गुलाब के फूल के समान। कमल का गायन पूजन है, चढ़ाया जाता है खास गुलाब का फूल, वो फूलों का राजा है गुलाब। तो हमें कमल का बनना है, कमल का तो है ही आप, अब गुलाब का फूल बनना है। तो बाबा की जो महावाक्य हैं, एक और मुरली है बाबा की, अभी कुछ दिन पहले आपने सुनी होगी कि अगर हम सर्व संबंध का अनुभव बाबा से अनुभव करते हैं, जो उसे प्राप्ति होती है वो प्राप्ति आत्मा को तृप्त कर देती है। तो अगर हमें परमात्म प्यार है तो वो आत्मा तृप्त आत्मा है। हमें ये देखना है, और नहीं तो इस भट्टी से हमें ये लक्ष्य रखना है कि मुझे तृप्त आत्मा बनना है। तो जो आपको मैं ये बातें सुना रही हूं, ये काल्पनिक नहीं है, यथार्थ धरातल की बातें ही बता रही हूं। देखिए, सबसे अच्छा हम ब्राह्मणों के जीवन में होता है अमृत बेला। तो जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारे लौकिक घरों में, मैंने बताया कि बहू तो पर्दे में रहेगी, बेटियां भी कहीं बाहर आना जाना नहीं करेंगी, इतना कोई आया तो मिलना जुलना कुछ भी नहीं। तो जब हम ज्ञान में आए तो हमें बाबा के भक्ति मार्ग वो श्लोक याद आया, मूकम करोति वाचा लंग पंगु लंग दे गिरिम परमात्म शक्ति। ऐसी महान शक्ति है, सर्वशक्तिवान की जो शक्तियां हैं ऐसी महान है, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। उसकी विधि है अमृत बेला। हम बाबा से जो वरदान लेना चाहें अमृत बेले, तो जब हम सेंटर पर रहने आए तो कोर्स क्लास कैसे कराएंगे, मुरली कैसे सुनाएंगे, भाषण कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, बरदाता बाबा तो हमारे साथ है ना, और अमृत बेले का अपॉइंटमेंट है। ऐसे दिन भर भी मिल सकते, लेकिन खास अमृत बेले जो वरदान चाहिए, जैसे आपको बताया परमात्म प्रेम का, तृप्त आत्मा होने का, न्यारे प्यारे रहने का, गुलाब का फूल बनने का, ये सब वरदान हम अमृत बेले बाप दादा से ले सकते हैं। तो जब हम भक्ति मार्ग में थे तो मेरे को कोई देवी देवता बहुत पसंद नहीं था। गीता में हमने पढ़ा था कि जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है, वो उसी को प्राप्त होता है। तो हमारा लक्ष्य था ज्ञान काल का कि मुझे केवल शिव बाबा की भक्ति करनी है बस, और किसी की नहीं। तो जब हम वाराणसी में रहते थे माता पिता के साथ, ऐसा स्थान लिया था पिताजी ने कि एक तरफ गंगा एक तरफ विश्वनाथ मंदिर। तो मुझे बहुत शौक था सुबह गंगा नहाना है, विश्वनाथ मंदिर में जाना है, और वही श्लोक पढ़ती थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो जब हम ज्ञान में आए और हमको बाबा का परिचय मिला, शिव बाबा का परिचय मिला, तो जैसे कि करंट सा लगा, तीर सा लग गया कि ओहो बाबा, आपने तो मुझे पहले ही पक्का करा के रखा था कि मैं एक बाबा को ही याद करूंगी, एक बाबा से ही मेरा प्रेम रहेगा। अब हम ज्ञान में आ गए। तो जब हम पहली बार सेंटर पर आए तो सेंटर पर उस समय में योग कक्ष नहीं होता था, बाबा का चित्र नहीं होता था, शिवलिंग नहीं होता था। तो पहली बार हम शाम को आए सेंटर पर, थोड़े से भाई बहन बैठ के योग कर रहे थे, हाल में लाल लाइट थी और सिर्फ दो चित्र थे, एक तरफ झाड़ एक तरफ गोला। ये प्रदर्शनी अंक बनना शुरू ही हुआ था। तो जब मैं पहली बार आई तो हमको ये बताया गया था कि निराकार शिव परमात्मा अपने भाग्यशाली रथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आके ये ज्ञान दे रहे हैं। और फोटो तो एक भी, सिर्फ फोटो कहाँ दिखाई दिया, जो त्रिमूर्ति है या झाड़ में देखा। तो मैं आके मैं भी योग में बैठ गई तो वो लोग तो अपने थोड़े पुराने थे, मैं तो पहली बार आई थी, लेकिन बाबा से बहुत प्रीत थी, लगन बहुत थी, भक्ति मार्ग से प्रीत बहुत थी बाबा से। तो मैं आके अपनी रीति बैठ गई और उसी आनंद में खो गई, जैसे लगा बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। योग का तो मुझे भी ज्ञान ही नहीं है, लेकिन योग का बहुत सुंदर मैंने अनुभव किया, योग का। उसके बाद फिर बहनों ने मुझे आत्मा का परिचय, थोड़ा बाबा का परिचय दिया और कहा कि आप रोज आकर के अब ज्ञान सुनो, कोर्स करो। तो फिर मैं आने लगी और फिर एक दो दिन में फिर उन्होंने और बातें बताई। तो मैंने कहा मैंने तो ज्ञान समझ लिया, मेरे को स्वीकृति दे दो तो मैं सुबह क्लास में आऊंगी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि, हमने कहा मैंने सब बात समझ ली, और समझी कुछ नहीं थी, थोड़ा सा ही समझी थी, पर मुझे लगा इतना ही ज्ञान है। फिर आने लगी, जब आने लगी तो महसूस हुआ, रही मुझे तो बहुत कुछ समझना है। बहुत उत्सुकता रहती थी, जिज्ञासा रहती थी, प्रश्न नहीं रहता था, अयोध्या क्या है, फिर राम की गद्दी कौन सी है, कृष्ण की कौन सी है। तो मैं फिर रोज क्या करती, दिन में आ जाती। मैंने कहा मेरे को स्पेशल आप पढ़ाओ, दिन में घंटा टाइम दूंगी, सुबह क्लास में आऊंगी, सुबह तो मुरली सुनने आऊंगी ही, लेकिन दिन में भी मैं आऊंगी और एक घंटा मेरे को पढ़ाना। तो फिर उन्होंने मेरे को पढ़ाना शुरू किया दिन में, मैं जो जो पूछती, नोट्स वगैरह बनाती। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या बाबा को चिट्ठी लिख दूं क्या, एक कहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि ऐसे चिट्ठी लिख के क्या करूंगी, मैं कोई कार्यक्रम रख लेती हूँ। तो बहन जी से मैंने पूछा, भाई जी से, तो भाई जी जो थे हमारे इंदौर के, ओम प्रकाश भाई जी जबलपुर में रहते थे, वहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। तो भाई जी से मैंने बात की कि मेरी बहुत अच्छी रॉयल कॉलोनी है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, मैं कार्यक्रम रख लेती हूँ, थोड़े कार्ड भी छपवा लेती हूँ। तो कार्ड छपा के सब सड़क पर हमारे घर के सामने कॉलोनी में टेंट लगाया, बढ़िया कार्ड बांटे, सब बड़े बड़े लोग आए, भाई जी बहन जी आए, उन्होंने भाषण किया और सबको ज्ञान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। तो मैंने कहा कि अब मैं बाबा को पत्र लिख सकती हूँ, क्योंकि नहीं तो ऐसे ही झूठ मूठ की चिट्ठी लिखूं बाबा को कि बाबा ऐसे ऐसे सेवा की है, अभी नए ही है, हम भी 10-5 दिन ही हुआ होगा मुश्किल से। लेकिन एक बात ये है, ज्ञान सुनते ही निश्चय हो गया और बाबा से प्रेम बहुत हो गया। तो खूब प्यार भरा पत्र लिखा बाबा को अच्छे से, बाबा मैं ये करूंगी, बाबा ये है, बस मेरे को तो आपसे मिलने की जल्दी है। तो चिट्ठी लिखा बाबा को, कुछ आंसू गिरे, कुछ स्याही बिगड़ी, तो बाबा को हमने पत्र लिखा, प्यारे बाबा का पत्र तुरंत आया, बहुत सुंदर पत्र बाबा ने लिखा, तुम सूर्यवंशी घराने की आत्मा हो, और भी बहुत, अब मैं तो इतनी नई नई ही थी, लेकिन हमने ये देखा कि अगर हमारा बाबा से प्यार है तो पुरुषार्थ आसान है। बाबा से प्यार खाली शिवाबा से नहीं, बाबा की मुरली से भी प्यार, बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा के कार्य से प्यार। और दूसरी बात, प्यार का सबूत ये है, प्यार का सबूत ये है बाबा के साथ हमें ईमानदारी से चलना है। बाबा के साथ ईमानदारी, यज्ञ के साथ, अपने बड़ों के साथ ईमानदारी। दूसरा आज्ञाकारी, तीसरा वफादारी, चौथा आज्ञाकारी, पांचवा फरमान बरदार। हमारे ओम प्रकाश भाई जी थे तो वो कहते थे, कोई योग करता है तो उससे शक्ति का अनुभव होता है, कोई योग करता है तो उससे शांति का अनुभव होता है। भाई जी कहते, आप जब योग करते हो तो आपके योग से सफलता प्राप्त होती है। तो अगर हमारा बाबा से जिगरी प्यार है, दिली प्यार है, तो हमको योग में मेहनत महसूस नहीं होती है। एक होता है योग की कोशिश, एक होती है कशिश। तो अमृत वेले हमें माना, जब मैं ज्ञान में आई थी तो मैं अमृत वेले बैठ के मैंने बाबा को कहा, बाबा को मैंने कहा कि बाबा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सबसे तृप्त आत्मा हूँ, मुझे चाहिए तो सिर्फ चाहिए, आप मेरी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाओ और उसमें आप प्रत्यक्ष हो जाओ, उसमें आप प्रत्यक्ष हो जाओ, मुझे बाबा का अनुभव चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा का अनुभव चाहिए। तो एक बार वहाँ जबलपुर में भट्टी हो रही थी, जैसे आप सब बैठे ना, आप थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, एक धर्मशाला ली थी हमने, तो ओम प्रकाश भाई जी बैठे क्लास करा रहे थे, हम सब ऐसे नज़दीक नज़दीक बैठे थे। धर्मशाला का हाल इतना बड़ा नहीं था, इससे छोटा था, भाई बहन भी इतने नहीं होते थे। तो मैंने पहली बार, हमने कहा बाबा आप मेरी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाओ, मुझे पता तो लगे ना परमात्मा कौन है क्या है। तो मैं बैठी थी, योग कर रही थी, योग में सेकंड नहीं लगा होगा, सेकंड मैंने पहली बार आत्मा का अनुभव किया, इतना सुंदर, इतना सुखद अनुभव, हो हो, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते, परमात्म सुख कहते, सेकंड नहीं लगा होगा आत्मा का निज का अनुभव और दूसरा बाबा का अनुभव, परमात्मा कौन है। हो हो, जिसके लिए ऋषि मुनि तड़पते रहे, तरसते रहे, भटकते रहे और नहीं मिला। और हम बच्चों को बाबा ने कितना सरल तरीके से आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, ऐसे बाबा ने दो बारी और भी कराया। शाम को मैं योग में बैठी थी तो बैठी ही रह गई, कितने घंटों बीत गए। तो हम बाबा से कहते हैं, देखो सत्युग में सब कुछ होगा लेकिन संगम युग महान युग है, संगम युग पर ही परमात्म अनुभूति होती है, आत्म अनुभूति होती है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख। जो परमात्म अनुभूति है ये संगम युग पर होती है। और ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने और अनुभव ही नहीं किया अतीन्द्रिय सुख का, तो अतीन्द्रिय सुख बाबा ने मुरली में भी कहा, बाबा ने मुरली में भी कहा है कि अगर हमारे अंदर कटुता होगी, घृणा होगी, नफरत होगी, वैमनस्यता होगी, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो आप बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। ये सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। और बड़ी बात नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं? अपने अनादि और आदि स्वरूप को इमर्ज करके उस स्वरूप में रहना। देखो, हम अपने बड़ों को देखते हैं, तो हम किसी भी के भी संपर्क संबंध में आए, किसी के बर्ताव व्यवहार में आए, हम पहले आत्मा को देखें। ऐसा है, वैसा है, गरीब है, अमीर है, तेरा मेरा, हमें देखने की जरूरत नहीं। तब हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। जैसे बताई ना पांच बातें यज्ञ के साथ, बाबा कौन है? पक्का सौदागर है, जादूगर है। तो फिर इस तरह से हम बाबा से मिलने के लिए आए। तो जब हम बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि नियम था एक वर्ष ज्ञान में चलेंगे फिर बाबा से मिलने आएंगे, साकार में हम मिलने आए बाबा से। 1965 में ज्ञान में आए, 1966 मई में पहली बार आए। सालों तैयारी की बाबा से मिलने जाना है, पत्र व्यवहार तो शुरू कर दिया था, चिट्ठी भेजती थी बाबा को। तो एक बार मैं बाबा से मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम बाप के समीप की अनुभवी आत्मा हो, तुम्हारे समीप जो आए उसको बाप के साथ का अनुभव कराना। फिर हम बाबा से मिलने आए साकार में। शाम को हमारी ट्रेन लेट आई थी, तो वैसे नियम था कि पार्टी आती थी तो बाबा तुरंत बच्चों से मिलते थे, लेकिन पार्टी लेट आई तो हम लोग क्लास में मिले। क्लास में बाबा को जब हमने, बाबा का फोटो तो देखा था लेकिन बाबा को जब हमने क्लास में देखा, बाबा को जब क्लास में देखा, ऐसे हम बैठे थे जमीन में और बाबा सामने बैठे थे बिल्कुल नजदीक में। बाबा आए, पालथी मार के संदल पर बैठ गए और हम बाबा से दृष्टि लेना था, दृष्टि ले रहे थे। दृष्टि देखते बाबा को देख के इतना वंडर लगा कि ऐसा ऐसा रथ, ऐसा बाबा, ओहो, ये परमात्मा की माना रथ है उनका, परमात्म अवतरण है। और क्या हम आत्मा के भाग्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने मिल सके और हम सामान्य से लोग, साधारण से लोग, हम तो बाबा को देखते ही रह गए। फिर बाबा ने हमको टोली दी, ऐसे लगे बाबा को देखे हम उड़ के चले जाएंगे। फिर हमने अपने हाथ पर ऐसे कर लिए, फिर कोई डांटेगा करेगा कुछ कि कहाँ चली जा रही उड़ के, तो हम अपना हाथ पैर ऐसे करके बैठे रहे। फिर उठे, बाबा से टोली लिए, तो बाबा ने बहुत प्यार किया, गले लगाया। बाबा ने कहा, बच्ची कल सवेरे बाबा मिलेगा आपसे अच्छे से। रात भर हमको नींद नहीं आई कि कौन से पुण्य कर्म का फल है, श्रेष्ठ कर्म का, कि अभी तो मैं बाबा से मिली, फिर सवेरे मिलूंगी बाबा से। रात भर बाबा को याद करती बैठी रही। फिर सवेरे बाबा के जो कुटिया है ना, थोड़ी कुटिया आजकल अलग टाइप की हो गई है, पहले फूस की थी, हम गए बाबा से मिले। बहुत अच्छी तरह से बाबा से मिले। फिर तो जितने दिन रहे, कभी बाबा के साथ भोजन, कभी घूमना, कभी मिलना, कभी खेलना, कभी पिकनिक, कभी कुछ मिलते रहे। तो जो हम ये महसूस करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि जो हम बाबा से मिले, बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी, उस नजर का फल मिला हमको जो बाबा से हम डायरेक्ट मिले तो ये सारी प्राप्ति वरदान के रूप में मिली कि कभी हमको पवित्र रहने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, घर से ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा। हमने एक है जीवन में युद्ध, उसकी निशानी है राम का धनुष बाण, और एक है कृष्ण की बांसुरी जो सुख चैन से बांसुरी बजा रहा बैठ के। हमने ये महसूस किया कि बाबा के वरदानों ने, भाई बहनों की दुआओं ने हमको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करना पड़ा, सहज जीवन। और कौन सा वरदान मिला? योग का वरदान मिला। बाबा ने जो कहा कि आप बाप के समीप की अनुभवी आत्मा हो, तो मैं सोचती थी कि जैसे मैं योग करती हूँ ऐसे ही सब लोग योग करते हैं। फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मेरा योग बाबा के साथ खास है। तो देखो, बाबा से अगर हमारा प्यार है, बाबा से प्यार है तो बाबा का भी हमारे से है ना। तो आज भट्टी आप करने आए हो, इस भट्टी में ये संकल्प करो कि एक बाबा दूसरा न कोई, मुझे पितावृता बनना है, मुझे पितावृता बनना है। अभी थोड़े दिन पहले एक मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा मन वचन कर्म, संकल्प बोल कर्म और स्वप्न। संकल्प में, बोल में, कर्म में और स्वप्न में। बाबा ने कहा स्वप्न में भी विकार आएगा तो भी सजा मिलेगी, और मन वचन कर्म में आएगा फिर तो वो सजा और बड़ी होगी। तो हमें पवित्रता की मुरली, पवित्रता हमारा सिंगार है, तो ये हमको शक्ति कैसे प्राप्त होगी पवित्रता की? उसके लिए है अमृत बेला। बाबा ने कहा कि अमृत बेला बाप दादा दोनों बच्चों से मिलने आते हैं, शिव बाबा होते हैं वरदाता के रूप में और ब्रह्मा बाबा होते हैं भाग्य विधाता के रूप में। तो आप अमृत बेले बाबा से वरदान लेंगे। और ये भी कहा अमृत बेले योग में नींद करना भी बाप की अवज्ञा है। कुछ भी हो, अमृत बेले हमें पावरफुल बनाना है, अमृत बेले को सशक्त बनाना है। अमृत बेले आप योग का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं तो सारा दिन आपका शक्तिशाली बीतता है, नहीं तो साधारण सा दिन बीत जाता है। संगम युग साधारण युग नहीं है, असाधारण युग है। तो हमें अमृत बेले बाबा से वरदान लेना है कि हम परमात्म प्यार में मगन हो जाएं, जिसको कहते हैं लगन में मगन। ये पाठ पक्का रहे मेरा, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे अर्जुन के लिए कहा गया कि उसको तीर मारना था आंख की पुतली में, जैसे आंख है ना उसमें बहुत महीन तारा होता है ऐसे। तो हमारी भी बुद्धि में क्या रहे, अब मेरे जीवन में एक बाबा दूसरा न कोई। तो अगर आप ये पाठ पक्का करेंगे तो इस भट्टी से आपको वरदान मिल जाएगा और आप सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, सांख्य योगी बन जाएंगे इस बात से कि एक बाबा दूसरा न कोई। सपने में भी कोई और याद नहीं आएगा। तो बाबा से हमारा बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा कौन है हमें अपने से पूछना चाहिए, हमें अपने से पूछना चाहिए कि बाबा कौन है। कौन ये ज्ञान हमें दे रहा, कौन हमारी पालना कर रहा। संगम युग पर ब्राह्मण जीवन की पालना तो बाप दादा ही कर रहे हैं ना। और भाई बहनों, समय बहुत नहीं बचा है कि हाँ अब हम ज्ञान में चले, चलो आज हमने पुरुषार्थ नहीं किया कल करेंगे ना, नहीं बिल्कुल। नंबर आप भले कितना भी पुरुषार्थ करोगे, नंबर कट हो जाएगा। देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में क्या अंतर है, ये अंतर हो जाता। तो इसलिए हमें लगन के साथ, देखो हम आपको बताएं, निश्चय बुद्धि बनने से हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ निश्चित है। क्या निश्चित है? जो होगा अच्छा होगा, कल्याण होगा। ऐसा क्यों? ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सोच विचार की, बहुत बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं। साइलेंस, संकल्प शक्ति, साइलेंस पावर, ये महान शक्ति बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो एक तो आपको अनुभव सुनाती हूँ कि एक बार हम नए ही सेंटर पर रहने आए थे, सेवा का बहुत शौक था। तो रक्षाबंधन आया, तो मैं एक बात ये बताना चाहूंगी आप सबको कि जैसे हम अमृत वेले सुबह उठ के बाबा के कमरे में जाते हैं, तो मैं कभी ये महसूस नहीं करती कि ये बाबा की फोटो है, मैं फोटो के सामने बैठी हूँ। मैं कभी ये महसूस नहीं करती, मैं बाबा से मिलने आई हूँ। बाबा से बकायदे, बाबा गुड मॉर्निंग, सुबह उठे बिस्तर से तो भी गुड मॉर्निंग, बाबा के कमरे में आए बाबा गुड मॉर्निंग, भले एक बार और बाबा गुड मॉर्निंग। अच्छा फिर अब तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ट्रांसलाइट का चित्र था, माना आदरणीय भाई जी ने ही बनवा दिया था, ओम प्रकाश भाई जी ने। तो मैं सवेरे योग में गई बैठने, तो मैंने देखा बाबा बिल्कुल चैतन्य में बैठा है, एकदम चैतन्य में। मैंने अच्छे से देखा, मैं खुश हो गई, धन्य हो गई, मैं दौड़ के चित्र पकड़ ली। अरे बाबा मिला, सब कुछ मिला, अभी और क्या चाहिए। तो साथ में जो बहन थी वो सोई थी, मैं जल्दी उठ के आ गई थी। मैं जबर से आवाज दी, अरे बहन दौड़ के आ, बाबा आ गए हैं मिलने। बाबा तो आते ही है मिलने, बाबा को आने में टाइम लगता। देखो विद्युत बोर्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये बल्ब जल रहा ना, बिजली से जल रहा ना, तो इसमें दो तारे होती हैं, इसको कहते विद्युत गति। माना एक सेकंड भी नहीं लगता, 50 बार ऐसे ऐसे करती विद्युत गति। ये हमारी रचना है, बिजली किसने बनाई? हम मनुष्य आत्माओं ने। तो परम पिता परमात्मा कौन है? हमारे संकल्प में देरी होगी, बाबा को आने में देरी नहीं। अगर आपका सच में बाबा से प्यार है, अमृत वेले उठ के आपको ऐसा महसूस होगा, तो आपको महसूस होगा, आप बाबा का चित्र देखो, आपको पता लग जाएगा कि आपका चार्ट कैसा है। अगर उत्तम चार्ट होगा या मध्यम है या कनिष्ठ है, तो अभी हमें तो हमने महसूस किया। फिर वो बहन तो आई, तब तक हरेक को अनुभव होगा क्या? जरूरी है, मुझे हो रहा तो उसको भी होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हरेक का अपना पुरुषार्थ होता। तो मैं हमेशा ऐसे ही महसूस करके बैठती हूँ कि बाबा को मेरे से मिलने, बाबा को मेरे से मिलने आना ही पड़ेगा। तो ऐसे अभी पिछले साल की बात है 2019 की, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मैं हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया बहनों ने, तो मैं बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया मैं इलाज नहीं करता। फिर बहनों ने योग किया मनाया, तो चलो मान गया डॉक्टर, अब मैं ठीक हो गई। पर पहले उसने मेरे को आईसीयू में रखा, आईसीयू में रखा, अब मेरे को होश होश आ गया। मेरे को बहनों ने, डॉक्टर ने बताया कि आपकी कंडीशन कैसी थी और आप इतने अच्छे हो गए। हमने कहा हाँ मैं तो सच अच्छी हो गई। तो फिर मैं, वो रात को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, आईसीयू में ही थी लेकिन सेपरेट कमरा डॉक्टर ने विशेष दिया था, और बाहर नर्स बैठी थी। कमरे में मैं थी, एक बहन मेरे साथ थी, और बाहर नर्स बैठी। आईसीयू वालों को तो जरा विशेष ही ध्यान देते। तो मैं बाबा का फोटो रखी थी, तो सुबह 4 बजे वो फोटो को योग कर रही थी। बाबा ने एक मुरली में कहा कि देखो हमारे 63 जन्म के हिसाब किताब तो हैं, जैसे आपने अनुभव किया होगा कि ब्राह्मण जीवन में कभी कोई विघ्न आ गया, कोई हिसाब किताब आ गया, कोई परीक्षा आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, तो कई बहादुर बच्चे हैं पार कर लेते और कई थोड़े भारी हो जाते। आज ये विघ्न आ गया, देखो ना बाबा ने मदद नहीं की। देखो ना बाबा की मदद का तो हम कुछ तुलना ही नहीं कर सकते। बाबा की मदद तो कदम कदम पर होती है, कुछ तो पेपर आए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, बाबा ने अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों का 99% बाबा माफ करते हैं, 1% तो आए, 1% आए तब तो पता चले कि बाबा ने कितना माफ किया। चलो आज किसी का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, ऊपर से गिर गया, पैसे की थैली चोरी हो गई, बुखार आ गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी बहुत बातें होती हैं। तो जो हुआ वो 1% हुआ, आप सोच नहीं सकते। तो वो जो हुआ शुक्र करो बाबा का, थैंक्स करो बाबा का, खुदा दोस्त थैंक्स। यही पेपर 99 गुना आता तब क्या होता, तो हमें पता लगे कि इतना बाबा ने माफ किया। बाबा कौन है? तो देखो फिर क्या हुआ कि मैं रात को सोई तो बाबा को बोली कि बाबा आप कहते हो कि 1% पेपर तो आएगा ही, लेकिन मेरे से तो 1% भी सहन नहीं हो रहा, खुदा दोस्त अभी ये भी फिनिश। ऐसे करके सो गई। सुबह 4 बजे उठ के योग कर रही थी तो नर्स आई, उसने कहा ये किसका फोटो है? फोटो छोटा सा नहीं था, थोड़ा इतना बड़ा था। तो ये किसका फोटो है? तो हमने परिचय बताया कि ये किसका फोटो है, उसको नर्स को बताया ना। तो नर्स ने कहा कि यही व्यक्ति रात को आपके कमरे में आया था। अब मुझे तो पता ही नहीं ना, वो तो वही बता रही, मुझे क्या पता। ये व्यक्ति आपके कमरे में आए थे, तो हमने कहा आपने अच्छे से देखा? उन्होंने क्या पहना था? कहा धोती और कुर्ता, पैर तो नहीं देखी मैं, धोती कुर्ता पहने थे, आए सीधा चले गए आपके कमरे में और कुछ देर रहे, उसके बाद वापस चले गए। हमने कहा आपने अच्छे से देखा? उसने कहा हाँ दीदी यही व्यक्ति थे। तो हमने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किया। तो देखो तो आवश्यकता है हम देह के वान से न्यारे रहें, अशरीरी अवस्था में रहें, विदेही अवस्था में रहें। और यह संगम युग तो देखो अभी थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा। और ये हम न सोचें अंत में कर लेंगे, अंत में करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बाबा की मुरली है, पिछले संडे की। बाबा ने कहा कि 3 बातें याद रखो, बहुत काल, अचानक, एवर रेडी। ब्रह्मा बाबा ने अंत में, सेकंड में चले गए बाबा। 18 जनवरी मनाते ना हम सब, तो बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को बहुत काल से वैराग्य वृत्ति होगी और एवर रेडी होंगी, वो अचानक के पेपर में उड़ जाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। हम सबको क्या करना है, तो भट्टी में ये पाठ पक्का करना है। आज भट्टी का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन किस बात का परिवर्तन? अपने हृदय का परिवर्तन, अपनी वृत्ति का परिवर्तन, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है कि मुझे ये परिवर्तन करना है। एक बाबा, दूसरा न कोई। सपने में भी बाबा के सिवाय कोई नहीं, सपने में भी कोई ना आए। मुझे इतना बाबा के साथ ईमानदार पिता व्रता बनना है, मेरी आंख कहीं न डूबे न किसी व्यक्ति में। मैंने तो ये पक्का कर लिया है, कोई व्यक्ति मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, सब कुछ विनाशी है। एक सदाशिव के सिवाय हर चीज में परिवर्तनशील है। एक परमपिता परमात्मा सदा, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा से अमृत बेले वरदान ले लो, प्रेम का सागर बाबा, प्यार का सागर बाबा, मेरा एक बाबा रहेगा ना। मुझे लगन योगी बनना है, लगन में मगन बनना है ना। तो इस तरह से मुझे माना आपको, ऐसे जितना हमारा पाठ पक्का होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बार की बात बताती हूँ, मैं घूमने गई, शौक में 3 किलोमीटर पैदल चलना था। एक महल था, उस महल में 3-4 किलोमीटर की दूरी थी। सब जा रहे थे तो मैं भी, मेरे को बहुत माना वो है गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, ऐसे लंबा चौड़ा बना हुआ है, सब वहाँ लाइट एंड साउंड दिखाते थे। सब गए तो मैं भी पैदल चलती गई। रात 8 बजे सो पूरा हुआ। वहाँ कोई साधन नहीं आने का सिवाय पैदल के। सब लोग तो अपना चल पड़े, अब मेरे से चलते ही न बने। तो मैंने कहा, अरे खुदा दोस्त, अभी क्या होगा, यहाँ तो कोई साधन नहीं मुझे जाने का सिवाय आपके। चलो कोई बात नहीं, बाबा को याद करते हैं, खुदा दोस्त को याद करते हैं। और मैं भी उनके साथ सब वापस गेट पर आ गई। मैंने कहा थैंक्स खुदा दोस्त ना। तो देखो, बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध होने चाहिए, किसी देहधारी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें पक्का पिताव्रता बनना है, एक बाबा दूसरा न कोई। लगन में मगन, जैसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। मुझे मीरा बेचारी तो भक्तन थी, हम भक्त थोड़ी हैं, हम तो कौन है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के नैनों के नूर हैं, मस्तक मणि हैं, गले के रतन हैं। तो हमें बहुत प्यार से, देखो आप भी, आप भट्टी में बैठे हो ना, ना तो चलो अभी हम सब ना, समय हो रहा है तो कमेंट्री करके योग करते हैं। तो हमें भी कौन सा अनुभव करना है, परमात्म प्यार का अनुभव करना है और उसमें खो जाना है, समा जाना है, डूब जाना है ना। और वरदान लेना है भट्टी का कि हमको कभी भी कोई इंद्रिय नहीं खींचेगी, देह की कोई इंद्रिया नहीं खींचेगी, कोई संबंध नहीं खींचेंगे और कोई वस्तु व्यक्ति नहीं। एक बाबा, अरे बाबा जैसा कौन, बाबा जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा? सोचो, बाबा जैसा कोई वस्तु मिलेगी ना? बाबा कौन है? देखो ये संगम युग ही है, सतयुग तो प्रारब्ध है संगम युग पर प्रत्यक्ष फल है वो प्रारब्ध है। संगम युग पर ही हम खाली रहे तो सतयुग में कैसे भरपूर होंगे ना। तो चलो 10-5 मिनट बाबा का अनुभव करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, बाबा आप प्यार के सागर हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं अनादि अविनाशी प्रेम स्वरूप अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्म प्यार का प्रभु प्रेम की लहरों में समाती हुई चली जा रही हूं। बाबा मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला, मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, मैं किसकी छत्र छाया में विराजमान हूं, स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की पालना में पल रही हूं। बाबा आप कितने मीठे हैं, मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को महसूस कर रही हूं। मैं कितनी श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं किसकी संतान हूं, स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा की रचना हूं। मुझे बाबा के निज स्वरूप की महसूसता हो रही है। मैं प्रभु प्रेम में ओत प्रोत होती जा रही हूँ। बाबा आप प्रेम के सागर हैं, मैं मास्टर प्रेम स्वरूप हूँ। प्यारे बाबा, मैं आपसे वायदा करती हूँ, अवश्य विश्व की सर्वात्माओं को परमात्म प्यार जरूर दूंगी। हर एक मानव मन की प्यास बुझाएंगे, हर एक को सुख शांति का रास्ता बताएंगे। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी सद्बुद्धि दी। बाबा आपने तो मुझे भरपूर कर दिया। प्यारे बाबा, आपने मुझे तृप्त आत्मा बना दिया, सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर दिया। ओम।